हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। केयर प्लस हॉस्पिटल, काल्पनिक नाम। वेदांत बेचैनी से हॉस्पिटल वार्ड के सामने चक्कर लगा रहा था। वो बार बार अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि विहा को कुछ ना हुआ हो। उसे घूमते हुए लगभग 15 मिनट बीत चुके थे, पर हॉस्पिटल वार्ड का दरवाज़ा नहीं खुला था। वहीं अंदर कमरे का सीन कुछ अलग ही था। डॉक्टर विहा पर गुस्सा करते हुए बोल रही थी, मैडम, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप आराम से यहाँ चिप्स खा रही हैं और बाहर आपके हस्बैंड परेशानी से घूम रहे हैं। विहा ने उस डॉक्टर को आंखें दिखाते हुए कहा, खबरदार जो उनको जाकर कुछ कहा, रुक जाओ, आधा घंटा बीतने दो, उसके बाद बोल देना कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर ने गुस्से से कहा, ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, हम अपने पेशेंट के गार्जियन को मिसगाइड नहीं कर सकते हैं, वरना हम पर केस भी हो सकता है और वेदांत निमानी का गुस्सा हमारा हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो प्लीज मुझे जाने दो। विहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जा सकती हो, मैंने तुम्हारे हाथ नहीं पकड़ रखे हैं, पर तुम्हारे जाने का क्या अंजाम होगा वो भी पहले सोच लो। विहा ने अपनी कलाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां उसने एक छोटी सी ब्लेड पकड़ रखी थी और डॉक्टर को धमकी दे रही थी कि वो हिले भी तो वो अपनी कलाई पर वो ब्लेड चला लेगी और इल्ज़ाम सीधा उस पर ही लगा देगी। डॉक्टर परेशान हो चुकी थी, उसका मन कर रहा था विहा का सर फोड़ दे। वहीं वेदांत बाहर परेशान हो चुका था। वो बेंच पर बैठते हुए अपना सर पकड़कर बोला, इतनी जल्दी उसे क्या हो सकता है, क्या उसने खाना नहीं खाया, क्योंकि कमज़ोरी की वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। वेदांत मुश्किल से 5 मिनट भी बेंच पर नहीं बैठ पाया और वो वापस उठकर फिर थक हार कर वार्ड का दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला, डॉक्टर, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। पर सामने से डॉक्टर की कोई आवाज़ नहीं आई, क्योंकि विहा उसे अपनी बिल्ली जैसी मोटी मोटी आँखों से डरा रही थी। वहीं डॉक्टर को विहा की धमकी का बिल्कुल डर नहीं लग रहा था कि वो उस पर इल्ज़ाम लगा देगी क्या, पर उसे बस एक ही बात का कन्फ्यूजन था, कहीं ये मेंटली अनस्टेबल तो नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो वो सच में खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। साफ शब्दों में कहें तो विहा को वो पागल समझ रही थी। वहीं विहा आराम से एक हाथ से चिप्स खा रही थी। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे वेदांत के परेशान होने से थोड़ा सा भी फर्क पड़ रहा हो। उस डॉक्टर ने अफसोस में ना में गर्दन हिलाते हुए अपने मन में कहा, गुजरात के सबसे मास्टरमाइंड समझे जाने वाले बिजनेसमैन को यही लड़की मिली थी शादी करने के लिए। सीरियसली, क्या लड़कों की पसंद इतनी खराब हो गई है कि उन्हें अब ये भी नहीं समझ आता कि कौन सी लड़की मेंटली अनस्टेबल है, सिर्फ खूबसूरत होने से क्या होता है। उसने विहा के प्यारे से चेहरे को देखते हुए सोचा, शायद वेदांत ने उसकी खूबसूरती देखकर ही उससे शादी की होगी, वरना तो उसमें ऐसी कोई खूबी नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से वेदांत उससे शादी कर ले। वहीं विहा बार बार टाइम भी देख रही थी और जैसे ही आधा घंटा बीता, उसने अपने हाथ में पकड़ी ब्लेड को फेंकते हुए मुस्कुराकर डॉक्टर से कहा, अब तुम जाकर मेरे पति को बता सकती हो जो बताना चाहो, आई डोंट केयर। इतना बोलकर वो बिस्तर पर लेट गई और अपने दोनों हाथ अपने सर के नीचे करके टुकुर टुकुर डॉक्टर को देखने लगी। डॉक्टर का मन किया विहा का गला दबा दे, पर बेचारी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए जल्दी से वार्ड का दरवाज़ा खोलते हुए बोली, आई एम रियली रियली सॉरी सर। वहीं वेदांत ने उसे बाहर आते देखकर उसे बोलने का मौका भी नहीं दिया और उसके बात पूरी होने से पहले ही उसकी बगल से कमरे के अंदर आते हुए बोला, वो ठीक है ना। उसने जैसे ही विहा को देखा जो आराम से उसकी तरफ देख रही थी, उसने एक सुकून भरी सांस ली और अपने धड़कते दिल को अपने हाथ से सहलाया। वहीं वो डॉक्टर वेदांत को देखकर अपनी मुट्ठियाँ कसते हुए बोली, ये भी नालायक है, पूरी बात भी नहीं सुनता है। वेदांत ने उसकी तरफ देखकर कहा, कुछ कहा आपने, तो डॉक्टर ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सर, मैं आपसे क्या कह सकती हूँ, वैसे आपकी पत्नी को कुछ नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता उनको क्यों चक्कर आए थे, क्योंकि मैंने तो उनकी पूरी जाँच कर ली है, यहाँ तक कि उन्होंने टाइम पर खाना भी खाया है। अगर हम ये कहें कि खाना न खाने की वजह से उन्हें चक्कर आए हों, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, और ये पिछले आधे घंटे से मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा देगी, क्योंकि इन्हें होश तभी आ गया था जब आप इन्हें लेकर आए थे, और मुझे तो लगता है कि बेहोश भी नहीं हुई थी, बस आपके सामने नाटक कर रही थी। वेदांत ने डॉक्टर को आंखें दिखाते हुए कहा, सोच समझ कर बोलो डॉक्टर साहिबा, मेरी पत्नी के बारे में बोल रही हो तुम, किसी ऐसी वैसी लड़की के बारे में नहीं, जानते हो ना मैं कौन हूँ। डॉक्टर ने सहमते हुए अपने 2 कदम पीछे लेकर कहा, जी सर, मैं बखूबी जानती हूँ कि आप कौन हैं, पर आप भी मेरे प्रोफेशन पर उंगली मत उठाइए, मुझे अच्छे से पता है किसको क्या होता है, वहाँ टेस्ट रिपोर्ट रखी है, आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर पैर पटकते हुए वहां से चली गई और उसके जाते ही वेदांत ने गहरी सांस लेकर अपनी दो उंगलियों को अपने माथे पर रब करते हुए कहा, कंट्रोल वेदांत, डॉक्टर गुस्सा नहीं हरते। विहा बार्दन टेढ़ी किए उसे देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि वेदांत क्या सोच रहा है, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। वेदांत तेज कदमों से उसके पास गया और उसे एक नज़र देखकर उसका हाथ पकड़कर उसकी नब्स चेक करने लगा। उसके बाद उसने विहा के चेहरे को देखा, जिस पर थोड़ी सी भी शिकन नज़र नहीं आ रही थी, जिसे देखकर फिर वेदांत ने केबल पर रखी रिपोर्ट्स के पन्ने पलटे तो उसमें भी सब कुछ नॉर्मल था। ये देखकर वेदांत ने गहरी सांस छोड़ी और फिर उसके बाजू थामते हुए उसे बेड से उठाकर कहा, चलो टमाटो, घर चलते हैं। विहा हैरानी से वेदांत को देख रही थी कि उसने अभी तक उसे डांटा नहीं, उसे कुछ कहा नहीं, या फिर कुछ ज्यादा ही शौक में चला गया। थोड़ी देर बाद विहा और वेदांत गाड़ी में मौजूद थे। विहा अब भी बार बार चोर नजरों से वेदांत को देख रही थी, पर वेदांत के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे, जिससे समझ पाना मुश्किल था कि वो विहा से गुस्सा है या नहीं, उसे विहा के बीमार होने से फर्क भी पड़ा है या नहीं। विहा ने फिर गंदा सा मुंह बनाकर खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। वेदांत की गाड़ी निमानी हाउस के सामने जाकर रुकी। वेदांत उतरा और फिर विहा की तरफ का दरवाजा खोलकर उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर निकाला। विहा ने हल्के गुस्से में कहा, वेदांत, मैं खुद भी चल सकती हूँ, आपको मुझे ऐसे खींचने की जरूरत नहीं है। वेदांत ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, वो उसे वैसे ही खींचते हुए घर के अंदर ले गया। माधवी, जो हॉल के सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी, उसने उसे ऐसे जाता देखा तो उसकी भवें तन गई और वो होठों पर मुस्कान सजाते हुए बोली, मुझे लगता है विहा की टिकट इस घर में कम दिनों के लिए ही बनी है, वो तो खुद ही अपने लिए परेशानियां खड़ी करती रहती है, शायद वेदांत के गुस्से से वाकिफ नहीं है अभी। वहीं निवेदिता, जो किचन में वर्कर्स को कुछ समझा रही थी, उसने वेदांत और वेदांत को ऐसे जाता देखा तो वो भी घबरा गई और वो तेज कदमों से किचन से निकलकर फिर वेदांत के कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं वेदांत ने कमरे में ले जाकर विहा का हाथ छोड़ते हुए गुस्से से कहा, क्या तुम पागल हो? अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ था तो तुम क्यों बेहोश होने का नाटक कर रही थी? इतना बोलने के साथ साथ ही वेदांत उसके करीब बढ़ रहा था। विहा लड़खड़ा गई और सोफे से टकरा गई, जिसके साथ ही वो सोफे पर बैठ चुकी थी। गिरने के डर से उसने सोफे की आर्मरेस्ट को पकड़ लिया था।
वेदांत ने उस पर झुकते हुए उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसे आंखें दिखाकर कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ विहा, जवाब दो मुझे, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या चल रहा है तुम्हारे इस खाली दिमाग में? आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? वेदांत आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही तेजी से चलती हुई निवेदिता वहां आ गई।